आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम किया अधिसूचित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश को राज्यसभा सदस्य के रूप में किया मनोनीत। ट्रेजरी से अवैध निकासी की राशि बढ़कर 33 करोड़ पहुंची। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को एक सप्ताह में विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। रांची यूनिवर्सिटी लीगल स्टडी अनियमितता मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने कमेटी गठन करने का दिया निर्देश। 3 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। और आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन अधिनियम 2026 अधिसूचित कर दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल इस विधेयक को मंजूरी दी थी। यह विधेयक राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। नए अधिनियम में 50% पद भारतीय पुलिस सेवा से महानिरीक्षक के पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाएंगे और न्यूनतम 67% पद अपर महानिदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। श्री हरिवंश का कार्यकाल कल समाप्त हो गया। पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के राज्यसभा से सेवानिवृत्त होने के बाद श्री हरिवंश को मनोनीत किया गया है। गृह मंत्रालय ने आज इस संबंध में अधिसूचना जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवा जब कोई काम करने का संकल्प लेते हैं तो उसे अपने कार्यों से सिद्ध करते हैं। सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की युवा शक्ति के बल पर ही देश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। बोकारो और हजारीबाग ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में निकासी की राशि लगातार बढ़ती जा रही है। बोकारो में अवैध निकासी की राशि बढ़कर 6 करोड़ और हजारीबाग में 27 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। इस संबंध में बोकारो के उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि मामले की लगातार जांच जारी है और इसमें कई नए नाम सामने आए हैं जिन खातों में पैसे ट्रांसफर किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों के खातों में राशि डालकर निकासी की गई है उनकी पहचान की जा रही है।
हम 2016 से इसकी जांच कर कुछ मामलों में ये आदमी कहीं एस कुमार के नाम से, कहीं राजेंद्र कुमार के नाम से, कहीं अस्मिता मिंज के नाम से, इस तरह के कई नामों से उसने किया है। पर ये पुलिस के अंडर इन्वेस्टिगेशन, अब ये लगभग ये जो राशि आ रही है करीब करीब, क्योंकि अब अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो इन्वेस्टिगेशन में पूरी बातें सामने आएंगी, लेकिन लगभग 6 करोड़ के आसपास ये राशि आ जाए।
इधर पुलिस कार्यालयों से संदिग्ध वित्तीय निकासी के मामले सामने आने के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय ने सख्त रुख अपनाया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों और इकाइयों को एक सप्ताह के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 से 23 अप्रैल तक 8वां पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश में कुपोषण को दूर करना और लोगों में पोषण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 9 से 23 अप्रैल 2026 तक 8वां पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। 8वें पोषण पखवाड़े का उद्देश्य देश में कुपोषण को दूर करना है। इस दौरान गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों और बच्चों के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से संतुलित आहार, स्वच्छता और सही खान पान की जानकारी दी जाएगी। साथ ही विभिन्न कार्यक्रमों, रैलियों और जागरूकता अभियानों के जरिए लोगों को पोषण के महत्व से अवगत कराया जाएगा। यह पहल स्वस्थ समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हुए सुपोषित भारत के लक्ष्य को साकार करने में सहायक बनेगा। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़।
जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूचीकरण को संचालित करने के लिए रांची जिला प्रशासन ने तैयारी तेज कर दी है। प्रशिक्षण 2 बैच में विभाजित है जिनमें 35-35 फील्ड ट्रेनर्स शामिल हैं। 3 दिवसीय प्रशिक्षण में मकान सूचीकरण, मकानों की गणना, डिजिटल डेटा संग्रहण, CMMS पोर्टल तथा हाउस लिस्टिंग का काम किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रांची की दो महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत इस क्षेत्र में विश्व में अग्रणी होगा। झारखंड उच्च न्यायालय में रांची विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडी से जुड़ी अनियमितताओं के मामले में सुनवाई हुई। अदालत ने सभी संबंधित पक्षों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के अनुरूप कॉलेज संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक कमेटी गठित करने को कहा गया जो 3 सप्ताह के भीतर कॉलेज का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट अदालत में प्रस्तुत करेगी। मामले की अगली सुनवाई 6 मई को निर्धारित की गई। महिला आरक्षण की दिशा में केंद्र सरकार की पहल का देश भर में व्यापक स्वागत हो रहा है। इस पहल का लक्ष्य नीति निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। पद्मश्री छुटनी महतो ने भी इस कदम की सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया।
19 तारीख को जो बिल आने वाला है हम उसके लिए हमारा भारत सरकार को हमें धन्यवाद दे रहे हो। आज महिला के लिए इतना सोचा है, कोई झुग्गी झोपड़ी में था, कोई बेरोजगारी था, सबको रोजगार का दिशा दे दिया है। जब 2014 से लेके आज 2026 तक इतना जो कांग्रेस सरकार जो 30 साल में नहीं कर पाया, आज 2 ही दिन में हमारा भारत सरकार ये उपलब्ध कर दिया।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा है कि वे बोकारो को विस्थापित परिवारों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं को समझेंगे। उन्होंने कहा कि विस्थापितों के अधिकारों के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।
न्याय लड़ाई करने के लिए हम आज आए हैं। ये पहले हर विस्थापितों का दिल और उनका दर्द समझ करके उनका एक आंदोलन बनाएंगे। पहले तो सब विस्थापित परिवार से बात करेंगे। हम देश का विकास के नाम पर कोई जमीन आपको दिया है, इसको गलत उपयोग कीजिएगा क्या? क्या उन विस्थापितों का बात को कोई उठाएगा तो आप गलत हो रहा है।
प्रमंडलीय आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल हजारीबाग सह अध्यक्ष जेआरडीए मनोज कुमार की अध्यक्षता में धनबाद समाहरणालय सभागार में जेआरडीए प्रबंध परिषद की 36वीं बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि बीसीसीएल और जेआरडीए मिलकर काम कर रहे हैं।
पीएमपी 2.0 के अंतर्गत ये जो लोगों को विस्थापित न करके उनको नए जगह पर स्थापित करना है, उसका मुख्य कारण ही यह है कि जो खतरे के स्थान में लोग रह रहे हैं उनसे जितना जल्दी बाहर निकल रहे हैं। उसमें पैकेज भी है, वित्तीय सहायता भी बढ़ाई गई है, घर की भी संख्या उसमें समुचित की गई है और बेहतर रोजगार स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ दिया जा रहा है। तो जितना जल्दी ये वहाँ शिफ्ट होंगे सबके हित में रहेगा।
घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक शुरुआती सत्र में लगभग 1% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 77,301 पर और निफ्टी 23,980 पर था। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,000 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,50,000 रुपए प्रति किलो है। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। यह मुकाबला आज शाम 7:30 बजे से गुवाहाटी में खेला जाएगा। इससे पहले कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने एक रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स को 3 विकेट से हराया। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम किया अधिसूचित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के पूर्व उपसभापति हरिवंश को राज्यसभा सदस्य के रूप में किया मनोनीत। ट्रेजरी से अवैध निकासी की राशि बढ़कर 33 करोड़ पहुंची। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों को एक सप्ताह में विस्तृत जांच रिपोर्ट सौंपने का दिया निर्देश। रांची यूनिवर्सिटी लीगल स्टडी अनियमितता मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने कमेटी गठन करने का दिया निर्देश। 3 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। और आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।